اب دوسرا دور ہے، ولما بلغ شدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے، ان کی نشو نما مکمل ہو گئی، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا. حکم کیا ہے ادھر؟ معاملہ فہمی، حکمت ہے آج ہمارے بچوں میں؟ حکمت، معاملہ فہمی، اسٹریٹ فارورڈ تو ہوں گے لیکن حکمت بہت کم ہوگی، کیونکہ کیا ہے، راس الحکمت ہی مخافت اللہ، حکمت کا سر اللہ کا خوف ہے. تو چاہتے ہیں کہ آپ اور مجھے حکمت ملے تو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے. اور دوسری چیز کیا دی؟ علم دیا. کوئی اور باتیں لکھی نہیں ہیں کہ موسیٰ کو کچھ اور بھی دنیا کی نعمتیں دی؟ تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت حکم اور علم ہے، یہی ایمان کی پہچان ہے اور یہ انسان کی معرفت ہے اللہ کے لیے. اللہ کی معرفت کا ذریعہ یہ دو چیزیں بنتی ہیں. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اب موسیٰ کی جوانی میں دیکھیے کتنا بڑا ایک فتنہ آ گیا. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی دوپہر کا وقت تھا، کہلولہ کر رہے ہوں گے، لوگ سو رہے تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تھا. یعنی ایک آدمی مسلمان تھا، ایک غیر مسلم تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا، میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا اور میری مغفرت فرما. فغفر له انه هو الغفور الرحیم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی اور وہ غفور الرحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، میرے رب، یہ احسان جب تو نے مجھ پہ کر دیا تب اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ شخص جو تھا وہ موسیٰ کو پکڑانے کا ذریعہ بنا. کیسے ہوا؟ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا وہ شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکارا. یعنی اس کی تو عادت ہی لڑنے جھگڑنے کی تھی، کل بھی پکارا، آج پھر پکارا. قال له موسى انك لغوي مبين، کہا موسا تو تو بہت ہی بڑا بہکاو آدمی ہے. پھر جب موسا نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، موسا کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا؟ تو اس ملک میں جب بار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسا، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور سہمتے ہوئے نکل گئے اور انہوں نے دعا کیا، میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا. کیا پتہ چلا؟ اپنے مسلمان بھائی نے ان کو پکڑوایا ہے اور غیر مسلم شخص کو اللہ تعالیٰ ان کی مددگار بنا رہا ہے. بہت ہی خوبصورت سبق ہے اس کے اندر. اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انسان کی مدد آتی ہے نا، تو بعض دفعہ اپنے لوگ اس کو فائدہ نہیں دیتے بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو فائدہ دینے لگتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا، مکہ والوں نے قدر نہ پہچانی اور مدینہ والوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا. اب موسیٰ کی زندگی کا تیسرا رخ ہے. مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر ہے. بندہ مومن کا مقام، بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. اور یاد رکھیے، یہی بات سمجھ آتی ہے بچوں میں حکمت کب آتی ہے، جو موسیٰ میں ابھی ہمیں دکھ رہی ہے، جب ماں کی طرف سے قربانی تھی. اولاد کی حکمتیں اور اس کو اللہ کا خوف کب ملتا ہے؟ جب مائیں قربانی کی سطح پہ جینا چاہتی ہیں. بچپن سے موسیٰ چونکہ اپنی ماں کے گھر میں پلے تو وہ خون میں آ گیا سب کچھ جو حضرت یوسف کے خون میں آ چکا تھا اپنے باپ کی طرف سے. اب موسیٰ علیہ السلام کی جدائی کا وقت ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال اپنے باپ سے جدا ہوئے، اب آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر، اپنے خاندان سے دور ایک دوسری طرف جا رہے ہیں اور اللہ بنا رہے ہیں. قتل کا الزام لگ گیا، مصر سے مدین طرف بھاگ رہے ہیں اور اب آپ دیکھیے وہ شخص نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان، بے گھر بےچارہ، بے جاب لیس شخص ہے اور کہہ کہہ رہے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ٹھیک جگہ پہ لے جائے گا. یہ گمان کریں، آپ کو اس پوری صورت میں اللہ کے ساتھ اپنے گمان ٹھیک کرنے کی دعوت مل رہی ہے. موسیٰ کی ماں کا گمان سچ ہوا. آپ دیکھیے ذرا موسیٰ کا گمان کیسے ہوتا ہے. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. یعنی وہ عورتیں مجبوری میں گھر سے تو نکلی تھیں لیکن مردوں کے ساتھ مکسنگ نہیں کر رہی تھی. قال ما خطبکما، موسیٰ نے پوچھا ان عورتوں سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں. यानी हमारे घर से निकलने की वजह क्या कि भाई है कोई नहीं, बाप बूढ़े हैं बल्कि नाबीना थे, तो हम इन बकरियों को चराने के लिए निकलती हैं। इससे पता चलता है कि औरत के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म के हालात आ जाएं तो मजबूरी में निकलना पड़ता है, लेकिन शरई पाबंदियों को तोड़ेंगी नहीं, मर्दों से बेटर साबित करने के लिए नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, बल्कि ऐसी औरतें जो है वो निकल फिर इंतजार करती थी जब सब पानी पिला के जाते, तो आपको पता है कि कुओं का पानी वक्ती तौर पर निकलता है, वो खत्म हो जाता, जो बचा खुचा नीचे पानी होता था वो पिलाने लगी। मूसा साहिब दर्द थे, उनको औरतों की ये बात सुनकर तरस आया। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके जानवरों को पानी पा दिया। अब कोई फालतू बात नहीं, कोई राहो रस्म नहीं बड़ी, कोई हालचाल नहीं पूछा, घर का पता नहीं, कोई फोन नंबर एक्सचेंज नहीं किए, बल्कि फिर एक साय की जगह पर जा बैठे और बोले, अब मूसा का कलाम सुनिए, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ए मेरे रब जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे मैं उसको मुख्ताज हूँ। मतलब क्या है, सब कुछ चाहिए, रोटी भी चाहिए, भूख भी लगी हुई है, सफर की थकन भी है, नहाना धोना भी होगा, घर भी चाहिए, कत्ल का इल्जाम भी है, परदेसी हूँ, जब जुबान ना खुले क्या मांगू क्या ना मांगू, तो ये दुआ मांगे। और ये हम अपनी बंदगी की दुआ में कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस दुआ के असरात, फजात हु इखदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कुछ देर न गुजरी थी कि इन दोनों औरतों में से एक शर्मोहया के साथ चलती हुई इनके पास आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। औरत की शान, औरत का जेवर हया है, बेहया लड़कियां और लड़कों से बातचीत करती हुई लड़कियां ये दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कि इस सब में हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। खैर वो लड़की आई, कहने लगी, मेरे बाप ने आपको बुलाया क्यों, लिया चाहिए कजरा मांसा कहीं तलना, ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया इसका जरा आपको दे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, कोई लगी लिपटी बात नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके पास पहुंचे और अपना किस्सा इनको सुनाया तो उन्होंने कहा, कुछ खौफ न करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। इन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान इस शख्स को नौकर रख लीजिए। इस औरत के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि साहिब फरासत तीन लोग हैं, जिसमें से एक ये लड़की है जिसने अपने बाप को मशवरा दिया था कि इस शख्स को नौकर रख लें। तो गोया कि मर्दों की तरह औरतों को भी अल्लाह ताला ने समझ दी है, वो भी अच्छे मशवरे देती हैं। बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो मजबूत भी हो और अमानतदार भी हो। मजबूती कहां से देखी कि एक बड़ा सा पत्थर जो कुएं के ऊपर होता था मूसा ने अकेले उठा के साइड पे कर दिया, और अमानतदार कैसे थे कि इन लड़कियों की तरफ नजर उठा के ना देखी। सूरज यूसुफ फिर याद कर लीजिए, यही खूबियां आपको हजरत यूसुफ में दिखी थी कि वो मिस्र के बादशाह बन रहे थे। तो याद रखिये, उम्मत मुस्लिमा को आज अपने अंदर इन चीजों को पैदा करने की जरूरत है अगर हम दुनिया के इमाम बनना चाहते हैं। काला इन्नी और ईदान उनके हक हदब न तई, उनके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक मेरे यहाँ मुलाजमत करो। जाहिर अब एक गैर मर्द घर में रहेगा तो क्या बना के रखेंगे। एक जरूरत क्या थी, कह देते इनका भाई बन जाओ, जो हमारे कल्चर में बड़ा मारूफ है, फुलां को भाई बनाया हुआ, कोई भाई नहीं बनता, कोई बहन नहीं बनती, झूठ है ये सब, जायज नहीं है। अब भाई नहीं बनाते, चचा बनाते, मामू बनाते, बन नहीं सकते। एक तरीका था जिससे वो महरम बन जाता, और वो क्या था कि अपनी एक बेटी की शादी कर दे। तो जब दामाद बन गया तो जाहिर है कि वो उस घर में रहने लगा। शर्त क्या थी कि 8 साल तक मेरे मुलाजिम रहो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी मर्जी है। पता क्या चला कि निकाह के वक्त शरायत रखी जा सकती है, लेकिन याद रखिए बहुत डेंजरस होती है, इसमें फिकी मसाइल है। अगर किसी शर्त पे निकाह कायम हुआ, जो ही शर्त टूटेगी निकाह खत्म हो जाएगा। मसलन अगर आप निकाह करते हुए शर्त करते हैं कि मेरी बच्ची यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, आप कभी हालात के फेर में आके वो मर्द अपनी बीवी को किसी दूसरे शहर ले जाए, चले शर्त टूटी तो निकाह टूट जाता है, नहीं करनी चाहिए। और याद रखिये, शर्तों पर घर नहीं बसते। आप करें, शर्तें रखें, फिर देखें आपके मियाओं के साथ जो जिंदगी निभी है क्या शर्तों पे निभी है, और जिन हालात से आप आज गुजरी हैं इतनी जिंदगी में, क्या ये शर्तें रखी होती तो आपकी शादी होती। तो ये तो हर एक अपना नसीब है, इसलिए माँ बाप को बच्चियों की शादी करते वक्त बहुत क्यूरियस नहीं होना चाहिए, ये करेगी वो करेगी, इसको हफ्ते में एक दिन आएंगे, इसको इतना पैसा देना, घर इसके नाम लगा दो, जेवर का दो, इन चीजों पे कभी घर बसते हैं। वो घर देख के कहेगा, लो घर लो और बेटी अपनी ले जाओ घर, मुझे रहना नहीं है। असल चीज होते ना वो खूबसूरत इखलाक और किरदार है। बच्ची कहीं भी रहे शादी के बाद, माँ बाप की आंखों के सामने रहे या दूर है, ये दुआ करें कि खुश रहे। दुखी है, रोती है हर वक्त आपके सामने, और ना सुर पाल लेते हैं हम लोग, बल्कि मैं सोचती हूँ कि बेटों के गम ज्यादा मुश्किल लगते हैं क्योंकि वो घर में होते हैं। मिसाल है, बेटे और बहू का झगड़ा होगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बेटी और दामाद का झगड़ा हो रहा है अपने घर में हो रहा है, आपको वो बताएगी भी नहीं, घर अच्छी बच्ची है। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं, जब हम डिटेल से जब पढ़ते हैं तो इसमें इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि शादी खेल नहीं है। और हजरत मूसा को देखिए, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, शादी भी हो गई, फिर साथ ही उन्होंने कह दिया 10 साल पूरे कर ले, आपकी मर्जी है, मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, तुम मुझे इंशाल्लाह नेक आदमी पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। निकाह किसके बीच में होता है, लड़के और लड़की के बीच में? नहीं, निकाह होता है लड़के और लड़की के वली के बीच में। ये इसकी दलील है कुरान की आयत, अय्यमल अजलैन कदैतु फला उदवान अलैह, इन दोनों मुद्दतों में से मैं जो भी पूरी कर दूं इसके बाद फिर मुझ पर कोई ज्यादती ना हो, और जो कौल इकरार हम कर चुके हैं अल्लाह इस पर निगेबान है, यानी 10 साल पूरे करूंगा, 8 करूंगा मेरी मर्जी, उसके बाद आप मुझे नहीं रोकें कि मैं आपकी बेटी को साथ रखूं या ले जाऊं। और 10 साल में तो हालात इतने बदल जाते हैं, मर्द ना ले जाए, बेटियां ही माँ बाप से ज्यादा शोहर के घर को पसंद करने लग जाती हैं। तो ये दुआ किया करें कि बेटियों के दिल लग जाए अपने ससुराल में, हर वक्त पीछे से पैगाम आ रहे हैं, इधर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, खाना पकाने तो माँ से पूछ रही है, लड़कियां सेट ही नहीं होती। बेटियों को शादी करके इस तरह भूल जाए जैसे मूसा की माँ अपने बच्चे को दरिया में डाल के भूल गई। अल्लाह के हवाले करें, कोई जालिम और जाबरों के घर में नहीं भेजी है आपने, वो भी आप जैसे इंसान है। तो बहरहाल इसमें हिकमत की बातें हमें मिली। पूरे किस्से के ऊपर अगर हम गौर करें तो आप देखिए कि मूसा का किरदार हमें मुहसिन का किरदार दिखता है, यही किरदार हजरत यूसुफ का पीछे था। हम अमूमन सफर से आए तो थके होते हैं और क्या कहते हैं, पानी लाओ, जूता रखा उतारो, ये करो, कौन हमारी खिदमत करे। मूसा का क्या जरूर था कि इतने थके हारे आए और खिदमत करवाने के बजाय खिदमत दे रहे हैं उनको। फिर दूसरी बात देखिए, औरत हया के दायरे में रहकर मजबूरन काम कर सकती है, अल्लाह ने औरत को ये हक दिया कि वो काम ना करे, लेकिन बाज हालात ऐसे हो जाते हैं तो अगर औरत हया में रहे तो इंशाल्लाह ठीक है। फिर दूसरी बात देखिए कि औरत ने मूसा से बात की मजबूरन जरूरतन, सीधी सीधी, कोई लोच नहीं। फिल्मों में इस पे पूरी फिल्म स्टोरी बन जाती और क्या कुछ उसके ऊपर भी रोल फोल लोग लिख देते, और कुएं पे मुलाकातें और शहरी बाबू और ये और वो कहानियां सुना सुना के कितनों ने हया सीखी। उछलती लपकती हुई औरतें हया सिखाती हैं। असल बात ये क्या, हजरत उमर इसकी तफसीर में लिखते हैं कि वो औरत हया के साथ कैसे चल रही थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगी मेरे साथ आओ तो आगे हुई, तो मूसा ने कहा नहीं तू मेरे आगे नहीं चल, तो आगे चलेगी तो तेरे जिस्म पे मेरी नजर पड़ेगी, तो कहा फिर मैं क्या करूं, घर का रास्ता तो मुझे पता है, कहा तू मेरे पीछे चल और ये कंकर ले ले, पत्थर उसके हाथ में दिए, कहा जिधर मुड़ना होगा ना उधर कंकर फेंकती जाना, मैं उधर मुड़ता जाऊंगा। आज अल्लाह ये हया तो दे हमारी बच्चियों को और हमारे बच्चों को। फिर देखिए क्या होगा, आज दीन के नाम पे लड़के लड़के मिक्स हो जाते हैं, इतने ज्यादा दीनी काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, बीच में मसले अपने शुरू हो चुके होते हैं, इतनी क्लोजनेस हो जाती है, एक टेबल पे बैठे मीटिंग करने वालों के क्या दिल में जज्बे नहीं आएंगे। तो याद रखिए एक बात अपनी जिंदगी में बांध ले, अल्लाह के दीन का काम भी अगर करना है तो अल्लाह के तरीकों से करना होगा। और फिर आप देखिए एक और छोटी सी चीज, अमानतदार है, औरत की तरफ नजर भर के नहीं देखा तो क्या वो बाद में किसी की खराब चीज को देखेंगे। फिर आप देखिए लड़की के बाप ने खुद रिश्ता दिया है, ये भी एक हमारे कल्चर में बहुत बुरा समझते हैं, फिर घर दामाद बन रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है अगर हालात ऐसे बन जाए, और लड़का अगर लड़की के साथ रहता है घर में, कोई बुरी बात नहीं है, ये सब कुछ हालात पे डिपेंड करता है। फिर आप देखिए कि कोई मेहंदी आई, उपटन हुआ, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा कुछ हुआ, शादी भी हो गई। आज हमने शादी कितनी महंगी कर दी, जरा कोई आज हमसे तो कोई पूछ के देखे किस तरह के हालात है। सिर्फ आपको बताने की खातिर, यानी कोई इसमें मुझे पसंद की बात नहीं है, आप देखिए कि आज और कल के बीच में आपने मेरे रूटीन में कोई फर्क नहीं देखा होगा ना, नहीं देखा ना, लेकिन आप कहते कि कल मेरे अपने घर में एक शादी थी रात को और हमने एक बच्ची का रुखसत की अपने घर से, अल्लाह के हुक्म से नमाज भी नहीं छुटी और तरावी तो हमारी मर्जी थी, हम पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप देखिए कि क्लास भी हुई, सब कुछ हुआ, खाने भी दिया, खिलाया, मेहमान आए भी चले भी गए, बच्ची अपने घर आप चली गई। 2-3 बार मुझे आज ख्याल आया दिन में कई दफा कि अच्छा क्लास से फारिग होकर मैं फोन करूंगी कि वो ठीक भी है कि अपने घर में चली गई। तो क्या मुश्किलात हमने अपनी जिंदगी में खड़ी कर ली कि आज शादी भी महंगी, हर चीज मुश्किल में पड़ गई, हम इस तरह रस्म और रिवाज में पड़ गए कि अल्लाह की बना आज हमारे अंदर वो सच्ची खुशियां इसीलिए नहीं रही। फिर इसके बाद आप देखिए एक और बात, और वो क्या है कि जब एक मर्द अपने सारे जिम्मेदारियां अदा करता है तो ससुराल के साथ उसके ताल्लुक की हदूद भी है। आज हमने दामाद को भी एक सर का बहुत ज्यादा बड़ा ताज समझ लिया और शेर से ज्यादा हम दामाद से डरते हैं, हालांकि आपको असल चीजें ऐसी नहीं दिखती, तो फिर वो अपने ससुर की खिदमत करते हुए दिखते हैं। आज हम कहते हैं बहुएं खिदमत करें हमारी माओ की, लेकिन अगर हमारे बेटे जाके अपने ससुराल की ड्यूटी ठीक कर रहे हैं कहते हैं देखो तुम्हें इन्होंने नीचे लगा लिया। कितनी खराबियां आज हमारे सोशल सिस्टम में, और कुरान हमारे साथ कैसा मामला करता है। अब आगे देखिए कि मूसा की मुद्दत पूरी, अल्लाह ने उनको सुरखरू कर दिया 10 साल, बल्कि मूसा ने एहसान किया, ससुर कह रहे हैं 8 साल की पाबंदी है, मूसा कहते नहीं 10 साल रहूंगा। फलम्मा कदा मुसल अजल, जब मूसा अलैहि सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी और वो अपने अहले याल को लेकर चला तो तूर की जानिब से इसको एक आंख नजर आई। अब मूसा की नबूवत शुरू हो रही है, इतने साल के इम्तिहानात में अल्लाह ताला सुरखरू करवाता है। उन्होंने अपने घर वालों से कहा ठहरो, मैंने एक आंख देखी है, शायद मैं इसमें से कोई खबर ले आऊं या कोई अंगारा ही उठा लूं जिससे तुम ताप सको। वहां पहुंचे तो वादी के दाएं किनारे पर मुबारक खित्ते में से एक दरख्त में से पुकारा गया। क्या पुकारा गया? इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा मैं ही अल्लाह हूँ सारे जहान वालों का मालिक। वही बात देखिए, बार बार जब सुन रहे हैं तो दिल पे असर तो बढ़ता ही है ना। और हुक्म दिया गया कि फेंक दो अपने असा को, यानी फेंक दो तो फेंक दिया। यूं ही के मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बलखा रही है तो वो पीठ फेर कर भागे और उन्होंने मुड़कर भी ना देखा। इरशाद हुआ मूसा, पलट और खौफ न करो, तू बिल्कुल महफूज है। अपना हाथ गिरेबान में डाल, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भींच ले। उलमाज भी कहते हैं कि कभी बहुत खौफ हो ना तो ये अपना साया सीधा हाथ दिल जैसे लेफ्ट साइड पे यूं थोड़ा सा रखें तो आपको एकदम सुकून मिलेगा। इसमें इशारा इसके लिए, फजानी का बुरहानानी मेर रब्बी कैला फिरौन व मलाइही इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन। ये दो रोशन निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए, वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने अर्ज किया, मेरे आका मैं तो इनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ। देखिए गुना नहीं भूला, 10 साल हो गए। हालांकि कत्ले खता था लेकिन गुना की एक तड़प होती है, गुना का एक नुक्ता रह जाता है दिल पे, का डरता हूँ कि कहीं वो मुझे मार न डाले। और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा जुबान आवर है, इसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज ताकि वो मेरी ताईद करे। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुठलाएंगे। फरमाया तेरे भाई के जरिए से तेरा हाथ मजबूत करेंगे। फिर दुआ करें, अल्लाह हमारे भाइयों को हमारे दीन के मददगार बना दे, अल्लाह उनको अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले और उनकी सब इखलाकी रूहानी नफसानी हर तरह की बुराइयों और तकलीफों और बीमारियों को दूर कर दे। तुम दोनों को ऐसा इक्तदार देंगे कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेंगे। हमारी निशानियों के जोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरोकारों का ही होगा। किसे प्यारे वादे अल्लाह के।